समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। रोज की तरह ही अगले आधे घंटे में हम उन सारी खबरों का लेखा जोखा आपको देंगे जिनका आपसे है सरोकार। डेटलाइन में हम बात करेंगे देश के शूरवीरों की, राज्यों की परिक्रमा हम करेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के माध्यम से, आर्थिक जगत और खेल के मैदान पर भी रहेगी हमारी नजर, और आखिरी सेगमेंट में हम याद करेंगे उन हस्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा। सायरा, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल।
गुड आफ्टरनून मुदिता, नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा वेयर वी ब्रिंग यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। तभी तो नाम है हमारे शो का परिक्रमा। एंड यस, सम बिजनेस न्यूज, सम न्यूज फ्रॉम world of sports, some tributes to great personalities and much more. All these over the next half an hour, but we begin with the headlines first. India is capable of attacking the terrorist hideouts with precision, asserts Prime Minister Modi.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की।
Three terrorists killed in an encounter with security forces in Shukru Keller Forest area in Shopian district of Jammu and Kashmir.
पंजाब में अमृतसर जिले के मजीठा में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मृत्यु और 6 अन्य लोग अस्पताल में भर्ती।
CBSE announces results for this year's class 10th and 12th board exams.
और भारतीय शेयर बाजार में कल के रिकॉर्ड उच्च स्तर के बाद भारी गिरावट।
And yes, we begin our show with the Dateline India, in which we take a look at the latest developments that are of importance at the national or global level. And of course, today we are going to talk about this great gratitude that the whole nation is paying to our soldiers.
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।
अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।
अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना,
अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना।
तो सायराज, पूरा देश शूरवीरों को नमन कर रहा है, ऐसे वीर जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सीमा पे डटे रहते हैं, चाहे आंधी हो या तूफान, उनके हौसलों को कोई गिरा नहीं सकता। हमने अभी हाल ही में ये देखा है और ऐसे शूरवीरों को हमारा शत शत नमन।
हम जाके अपनी मंजिल पर
से हंस के खेलना, इतनी तो हमें हिम्मत है,
मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है।
हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं, तैयार हैं।
अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना,
अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम।
Prime Minister Narendra Modi has given a strong message that India is capable of attacking the terrorist hideouts with precision. On the success of Operation Sindoor, Mr. Modi said, under the operation, not only the terrorist camps were destroyed, but their nefarious designs and audacity were also defeated.
ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है।
Mr. Modi gave this message while interacting with the air warriors and soldiers at Air Force Station Adampur in Punjab. He lauded the courage, valor and professionalism of the armed forces in protecting the nation during Operation Sindoor.
हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया, उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया।
Mr. Modi said, Bharat Mata ki Jai is the resolve of every soldier who is ready to sacrifice his life for the country.
Jab hamare drones dushman ke kile ki deewaron ko daha dete, jab hamari misailen sansanati hui nishane par pahunchti hain, to dushman ko sunai deta hai Bharat Mata ki Jai. Jab hamari faujein न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय।
The Prime Minister said it is the voice of every citizen who wants to live for the country and do something for the country.
आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी, तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूँ।
Prime Minister Narendra Modi visited Adampur Air Base in Punjab today and interacted with the brave air warriors and soldiers. During the interaction, Mr. Modi lauded their valor and boosted their morale. In a social media post, the Prime Minister said it was a very special experience to be with those who epitomize courage, determination and fearlessness. More from our correspondent.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमपुर एयरबेस का दौरा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के मद्देनजर हुआ, जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था। सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र सशस्त्र बलों के पराक्रम के लिए उनका सदा ऋणी रहेगा। उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ भारत माता की जय के नारे लगाए।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
कल श्री मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया था और जोर देकर कहा था कि देश पर किसी भी आतंकी हमले का कड़ा और दृढ़ जवाब दिया जाएगा और नई दिल्ली परमाणु हथियारों की धमकी से नहीं दबेगा। इस बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में CDS जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बीच भारत आज शाम दिल्ली स्थित विभिन्न देशों के डिफेंस अटाशे को ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बारे में जानकारी देगा। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में कई आतंकी शिविरों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सशस्त्र बलों की अद्वितीय वीरता को सलाम किया और उन्हें देश की ढाल और दुश्मनों का नाश करने वाला बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की सराहना की और कहा कि ये पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ देश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
And an 11-day nationwide outreach campaign on Operation Sindoor has been launched today. It is largely known as Tiranga Yatra. The campaign aims to highlight Indian Armed Forces' success against Pakistan. Ex-servicemen, social workers, social organizations, as well as prominent BJP leaders will be part of this public program.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि देश की सामूहिक भावनाओं का एक शक्तिशाली प्रतीक है।
ऐ वतन, ऐ वतन, जान जान, जान मन, ये समा, ये बहार, दिल फिदा जान सा। ऐ वतन, ऐ वतन, जान जान, जान मन, ये बहार, दिल फिदा जान सा। जलवा तेरा जलवा, तौबा
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास। तो सायरा, सबसे पहले हम चलते हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की तरफ। धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य में संचालित चार धाम यात्रा के बाद अब कल से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आइए आपको लेके चलते हैं हमारी राज्य संवाददाता साक्षी सिंह के पास।
उत्तराखंड में कल से पवित्र आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा शुरू होने जा रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने बताया है कि यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केएमवीएन के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि 14 मई को आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का पहला जत्था काठगोदाम से रवाना होकर नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विभिन्न मंदिरों का दर्शन करते हुए गुंजी पहुंचेगा, जहां से जोलिंगकोंग में आदि कैलाश और नाभिढांग में ओम पर्वत के दर्शन के लिए जाएंगे। महाप्रबंधक ने बताया कि यात्रा के लिए अब तक 102 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है।
आदि कैलाश यात्रा राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा जो इस साल 14 मई से शुरू हो रही है। अभी तक हमारे पास 102 रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुके हैं और 14 तारीख से 8 बैच हमने वो कर दिए हैं। उसके साथ साथ चूंकि इस बार कैलाश यात्रा भी शुरू हो रही है, तो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए बाकी बैच भी फाइनल किए जा रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा में जो है काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे केएमएन के लोग उनको रिसीव करेंगे, उसके बाद भीमताल होते हुए जो अपना पूर्ण निर्धारित रूट है उसके जरिए यात्रा का संचालन किया जा रहा है। कैलाश यात्रा की शुरुआत जो है टनकपुर से होगी और उसके पश्चात जो है आगे पिथौरागढ़ धारचूला होते हुए आगे जो पूर्ण निर्धारित रूट है उसी से चलेगी।
इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से 25 अगस्त के बीच होगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13 मई है। तीर्थयात्री विदेश मंत्रालय की वेबसाइट kmy.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय हर साल जून से सितंबर माह के दौरान उत्तराखंड के लिपु लेक पास और सिक्किम के नाथुला पास के जरिए इस कैलाश यात्रा का आयोजन करता है। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस साल तीर्थयात्रियों के 15 जत्थे उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाएंगे। 50-50 तीर्थयात्रियों के 5 जत्थे उत्तराखंड से लिपु लेक पास को पार करते हुए मानसरोवर जाएंगे। वहीं सिक्किम से नाथुला के रास्ते 50 यात्रियों के 10 जत्थे यात्रा करेंगे। 5 साल बाद फिर से शुरू हो रही इस यात्रा को भारत और चीन के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है पिछले साल में हुए समझौते के तहत दोनों देशों ने देनचौक और दिपसांग से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया था। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
And we go further north to Leh. The 475-kilometer long Leh-Manali National Highway or NH03, another access to connect Border Union Territory of Ladakh with the rest of the country, has officially reopened from today, that is 13th of May, for vehicular traffic after remaining closed for over 5 months due to accumulation of snow at various passes. With the reopening of this highway, all the traffic routes connecting Ladakh are thoroughly easing the connectivity of the region in the backdrop of closure of the Leh airport amidst the Indo-Pakistan standoff. Our Leh correspondent Yangchan Dolma has filed this report.
Border Road Organization organized a reopening ceremonial event yesterday at Sarchu, a place which marked the border between Himachal Pradesh and Ladakh, located 252.5 kilometers from Union Territory headquarters Leh. The reopening of this highway has brought huge relief to the people in availing uninterrupted connectivity. The Leh-Manali Highway is a critically important route for the movement of the armed forces and the civilian, as well as transportation of essential supplies to forward areas in Ladakh. The reopening ceremony of this highway was attended by the officials from the Border Road Organization, BRO, Project Himang and Project Deepak, and representatives from both Himachal Pradesh and Ladakh. BRO personnel worked tirelessly to clear snow from several high-altitude mountain passes including Taklangla, 17,480 feet, Lachungla 16,616 feet, and Nakila 15,547 feet on the Ladakh side, and Baralachala 16,480 feet on the Himachal side. On the Ladakh side, Triple One RCO Project Himang, under the supervision of Captain Manish Ranjan, carried out snow clearance operation. Project Deepak was responsible for the road restoration on the Himachal side. The highway had been closed since November 2024 due to winter snowfall. Yangchan Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
और खेल के मैदान की हलचल में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने यह घोषणा की है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 17 मई को फिर से शुरू होगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद IPL 2025 को 9 मई को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। 17 मई को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मोहाली और धर्मशाला में IPL का कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा। IPL का फाइनल अब 3 जून को खेला जाएगा, जबकि प्लेऑफ 29 मई से खेले जाएंगे।
And if you take a look at what's happening in Khelo India Youth Games, well, gymnastic events took place there at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. In the rhythmic gymnastics hoop final, Parina from Maharashtra clinched the gold. This marks her 5th medal in the current edition of the games. She has secured 3 gold and 2 silver medals so far. Rachel Deep from Delhi won the silver medal, while Maharashtra's Devangi Harshal Pawar took home the bronze. Speaking exclusively to Akashvani News, Parina dedicated her medals to her coach and family.
मैं इंटरनेशनल रिदमिक जिमनास्ट हूँ और मैं खेलो इंडिया गेम्स में 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स जीती हूँ। खेलो इंडिया का सब ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत अच्छे थे, यहाँ का स्टेडियम बहुत अच्छा है और इधर का खाना भी बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट्स अच्छे हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है एथलीट्स का।
In the ball gymnastics final, Maharashtra's Kimaya Karle emerged victorious with a gold. Parina narrowly missed out the gold in a close contest and settled for silver in this one. Rachel Deep won the bronze in this category, and after the medal ceremony, Kimaya expressed her joy.
So, ball final event में मुझे gold मिला है और मेरा aim है कि international में India के लिए medal लाना। खेलो इंडिया का मैनेजमेंट तो एज यूजुअल बहुत अच्छा ही है, हमें बहुत अच्छा कारपेट मिला है, इतना बड़ा स्टेडियम मिला है, सब प्रॉपर इक्विपमेंट्स है, होटल और स्टे वगैरह भी बहुत अच्छा मैनेज किया है।
The benchmark domestic equity indices today ended with losses of around 1.5% as the markets took a breather amid profit booking and cautious sentiment from investors following the previous session's massive rally. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex slumped 1,282 points or 1.55% to close at 81,148. National Stock Exchange Nifty 50 dropped 346 points or 1.39% to settle at 24,578. That was the business news.
और श्रोताओं, अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। और इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे, साथ ही नजर डालेंगे आज के दिन घटी प्रमुख घटनाओं पर भी।
We remember the freedom fighter and former President of India, Fakhruddin Ali Ahmed, who was born on the 13th of May 1905 in New Delhi.
Fakhruddin Ali Ahmed was the son of an army doctor from Assam. Ahmed joined the Indian National Congress when he met Jawaharlal Nehru in 1925 and jumped into the freedom struggle. In 1942, he participated actively in the Quit India movement, for which he was arrested and sentenced to 3.5 years of imprisonment.
After independence, Fakhruddin Ali Ahmed was elected to the Rajya Sabha in 1952 and thereafter became Advocate General of the Government of Assam. He was also elected to the Assam Legislative Assembly for 2 terms. He was twice elected to Lok Sabha, first in 1967 and again in 1971. As a cabinet minister, he held diverse portfolios relating to food and agriculture, cooperation, education, industrial development and company laws.
Fakhruddin Ali Ahmed served as the 5th President of India from 1974 till his death on the 11th of February 1977, when he collapsed in his office while preparing to attend his daily namaz.
We also remember Gandhian freedom fighter V.R. Krishnan Eruthachan, who died on the 13th of May 2004. A prolific writer in both Malayalam and English, Krishnan was the founder general secretary of Cochin State Praja Mandalam, the political arm of the Congress Party in the erstwhile Cochin State before independence, and also the founder editor of the Deenabandhu newspaper. He converted the Congress Party into a truly mass-based party in his region. V.R. Krishnan Eruthachan was born in Avinisheri, Thrissur on the 25th of April 1909. He got inspired to join the freedom struggle after meeting Mahatma Gandhi in Thrissur in 1925. with the aim to end the sovereignty of Cochin King and to form a responsible government. Prajamandalam was formed on the 9th of February 1941 with Ezhuthachan as founder general secretary. In January 1942, Prajamandalam decided to conduct the first annual meeting at Irinjalakuda. Diwan A.F.W. Dixon banned it due to the resentment caused towards the king by the activities of Prajamandalam. As a consequence of the ban, many leaders of Prajamandala, including Ezhuthachan, were arrested. During the Quit India movement, on the 5th of August 1942, a conference was conducted under the leadership of Gandhiji for the All India Congress Committee at Bombay. Ezhuthachan and S. Neelakanda Iyer attended the conference by representing Prajamandalam. As part of the Quit India movement, Prajamandalam actively participated in strikes. When Prajamandalam decided to face an election in 1945, Ezhuthachan was unanimously elected to the Cochin Legislative Council. Ezhuthachan was a member of the Travancore Cochin Legislative Council representing Nemmara. After independence, Ezhuthachan dedicated his life to people and writing. He received the Kerala Sahitya Academy Award for his autobiography, V.R. Krishnan Ezhuthachan, Atmakatha, in 2000. V.R. Krishnan Ezhuthachan breathed his last on the 13th of May 2004.
And if we continue this journey of remembering those great personalities, another towering personality who contributed in the Indian freedom struggle was Hasrat Mohani. His real name was Sayyed Fazlul Hasan. And he was not just a shayar, but of course, hum sab log jo hai Inqilab Zindabad jo popularized kiya Bhagat Singh ne, lekin it was coined by Hasrat Mohani. Very few people know that. And he was an Indian independence activist, as we all know, and of course, a great shayar of Urdu. And well, together with Swami Kumaranand, he is regarded as the first person to demand complete independence for India in 1921 at the Ahmedabad session of Congress. Maghfoor Ahmad Ejazi supported the complete independence motion demanded by Hasrat Mohani. And kafi agar dekha jaye unki shayari ki bhi baat agar ki jaye to ek se ek unhone ghazlein likhi hain, chupke chupke raat din to sab log jante hi hain. Uske alawa kuch ashar hain Mudita
ji.
नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब आती है तो अक्सर याद आते हैं वो.
क्या बात, क्या बात. और सायरा कृष्ण के भक्त थे वो और उनकी कई कलाम कृष्ण को समर्पित हैं. जैसे यही सुनिए कि बरसाना और नंदगांव में भी दिखाए हैं जलवा किसी का, पैगाम हयात जाविदा था हर नगमा एक कृष्ण बांसुरी का.
That's very right. And he championed the freedom struggle, wrote verses expressing deep love for Krishnaji, as you had said. And he often went to Mathura to celebrate Krishna Janmashtami. Bahut bade Krishna bhakt bhi the aur bahut hi ek maverick the. The literary historian and translator Rakshinder Jaleel has in fact written a very nice book on him. Aur ek maverick maulana unko bola kyunki wo ek taraf apni faith se bhi jude the and uske sath sath wo Krishna bhakt bhi khud ko kehte the. So it's a beautiful, you can say, epitome of our Indian culture.
Bilkul.
And his contributions against, if in the freedom struggle, he was imprisoned for promoting anti-British ideas, especially for publishing an article against British policies in his magazine, Urdu-e-Mualla.
जी. और अब बात थिएटर की दुनिया के एक ऐसी शख्सियत की जिनके बिना भारतीय रंगमंच की बात करना बेमानी है, जिन्होंने आधुनिक भारतीय रंगमंच को न केवल नई दिशा और नई सोच प्रदान की बल्कि एक वैश्विक पहचान भी दी. हम बात कर रहे हैं मशहूर नाट्य लेखक और रंगकर्मी बादल सरकार की, जिनकी आज पुण्यतिथि है. 15 जुलाई 1925 को कोलकाता में जन्मे बादल सरकार का असली नाम सुधींद्र सरकार था. पेशे से इंजीनियर थे. 1956 में पहला नाटक सॉल्यूशन एक्स लिखा, लेकिन उन्हें पहचान मिली एवं इंद्रजीत और पगला घोड़ा से. उनके कुछ अन्य प्रमुख नाटक हैं सगीना महतो, भानुमति का खेल, बाकी इतिहास, बल्लभपुर की रूपकथा और जुलूस आदि. साथ ही सायरा वे रंगमंच की तीसरी धारा यानी थर्ड थिएटर के जनक माने जाते हैं. और ये जो थर्ड थिएटर था ये आम आदमियों का रंगमंच था, जिसे हम पीपल्स थिएटर कहते हैं, जिसमें वे बिना किसी टिकट के बेहतरीन नाटकों का मजा ले सकते हैं. 1980 1968 में बादल सरकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1972 में पद्मश्री, साथ ही 1997 में भारत सरकार द्वारा प्रदर्शन कला में सर्वोच्च सम्मान संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया और 2011 में आज ही के दिन 86 साल की उम्र में बादल सरकार ने जीवन के रंगमंच को अलविदा कह दिया। और श्रोताओं, हम अगली हस्ती पर जाने से पहले आपको एक धुन सुनवाना चाहेंगे। श्रोताओं, आप में से जिन लोगों ने भी 80 के दशक में दूरदर्शन देखा होगा उन्होंने इस धुन को जरूर पहचान लिया होगा। मालगुड़ी डेज नाम की सीरीज का टाइटल सॉन्ग था ये। मालगुड़ी डेज और स्वामी हम में से बहुत से लोगों के लिए बचपन की याद है, नॉस्टैल्जिया है।
जैसे ही सब लोग ये धुन सुनते हैं, आई एम श्योर हम सब लोग उस नॉस्टैल्जिक मोड में चले गए।
बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा एक फिल्म है, हिंदी फिल्म गाइड, जो हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में जिसको गिना जाता है। तो मालगुड़ी डेज और गाइड दोनों के लेखक आर के नारायण की आज पुण्यतिथि है। रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, जिन्हें हम सभी आर के नारायण के नाम से जानते हैं, वे अंग्रेजी में लिखने वाले सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले भारतीय लेखकों में से एक हैं। मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण उनके भाई थे। 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में उनका जन्म हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा, स्वामी एंड फ्रेंड्स। और सायरा, विडम्बना देखिए कि प्रकाशक उसे छापने के लिए तैयार नहीं थे, और तब ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे उनके एक दोस्त ने उसे मशहूर लेखक ग्राहम ग्रीन को दिखाया, जिन्हें उपन्यास बहुत पसंद आया, और उनकी अनुशंसा पर ऑक्सफोर्ड प्रकाशन ने इसे छापा। देश विदेश में इस उपन्यास को बहुत पसंद किया गया और इस उपन्यास से मालगुड़ी का जो सफर शुरू हुआ वो बाद में भी कई कहानियों और उपन्यासों में जारी रहा। मालगुड़ी नाम का ये काल्पनिक कस्बा जो था श्रोताओं, वो लोगों के दिलो दिमाग में इस कदर बस गया कि लोग वहां जाने की सोचने लगे। और दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक में एक रेलवे स्टेशन है अरसालू, जहां इस टेलीविजन सीरीज की शूटिंग की गई थी। तो मैसूर रेलवे डिवीजन ने स्टेशन को एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया है, जिसमें मालगुड़ी की कहानियों और दृश्यों को दर्शाया गया है। सायरा, ये शायद पहली बार ऐसा कोई और उदाहरण याद नहीं आ रहा है मुझे इस वक्त कि ऐसा हुआ हो कि किसी कृति में से, किसी की लेखक की रचना में से निकाल के ऐसा कुछ आया हो सामने। तो उनके लिखे कुछ अन्य उपन्यास हैं, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, अ टाइगर फॉर मालगुड़ी। और द गाइड उपन्यास के लिए 1958 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 1964 में उन्हें पद्म भूषण से और सन 2000 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
Remembering another poet today, Sukant Bhattacharya, a Bengali poet. He was called Young Nazrul, and Kishore Vidrohi Kavi, a reference to the great rebel poet Qazi Nazrul Islam, for Sukant's similar rebellious poetry and his stance against the tyranny of the British Raj and the oppression by the social elites through the work of his poetry. And he died from tuberculosis 3 months before India achieved independence. He was the paternal uncle of Buddhadev Bhattacharya, who was the former chief minister of West Bengal.
और सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर तंजूर बाला सरस्वती की आज जयंती है। देश विदेश में भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने में जिनकी बहुत अहम भूमिका थी सायरा, दक्षिण भारत के बाहर भरतनाट्यम प्रस्तुत करने वाली वे पहली कलाकार थी। 1955 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और
एंड वी आर रिमेम्बरिंग मनहर उदास टुडे आल्सो ऑन हिज बर्थडे। उनके बारे में बात क्या की जाए, इज इट्स बर्थडे टुडे, और सबसे ज्यादा तो अच्छा होता है एक आर्टिस्ट की क्यों ना उनकी क्रिएटिविटी को ही सुना जाए।
जी,
हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई, मरने वाला कोई।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुदिता और सायरा मुज्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।